नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून लागू किया गया है। बजट सत्र के पहले दिन आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नए कानून के अंतर्गत गांव में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है।
विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। नई रिफॉर्म से गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगा, साथ ही भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकना सुनिश्चित हो पाएगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व ने भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम को देखा है। उन्होंने कहा कि देश ने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा प्रणालियों को और मजबूत करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र जारी है। उन्होंने कहा कि 2025 में भारत का रक्षा उत्पादन 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गया है।
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिद्धू जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज सुबह बारामती में हुए विमान हादसे में निधन हो गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अजीत पवार के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि अजीत पवार का असामयिक निधन न केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीत पवार एक अनुभवी राजनेता थे और उन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया, जिससे सदैव याद रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने भी अजीत पवार के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि बिलासपुर जिला में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। बिलासपुर में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए धर्माणी ने कहा कि इस अभियान के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनन से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनके माध्यम से पोषण, सहायता, स्वास्थ्य जांच व कौशल प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अतुलनीय योगदान है। वे आज शिमला में नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और नाबार्ड के सहयोग से इस दिशा में बेहतरीन कदम उठाए जाएंगे।
छोटा स्टेट है, फंड का क्रंच यहाँ रहता है, उसमें नाबार्ड सबसे ज्यादा मददगार हमें रहता है। भारत सरकार की स्कीम्स जो है उससे भी लाभ मिलता है और नाबार्ड का तो विशेष हमको जरूरत होती है कि जो ज्यादा से ज्यादा हम कैपिटल इंटेंसिव जो हमारे खर्चे होते हैं वो हम इससे बियर करते हैं।
इस अवसर पर नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर विवेक पठानिया ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में नाबार्ड की ओर से 45,809 करोड़ 93 लाख रुपए की ऋण क्षमता रखी गई है।
दो साल से हम देख रहे हैं कि हिमाचल में एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट ऑफटेक बहुत अच्छा हो रहा है, तो 45,000 का जो हमारा अगले साल का जो क्रेडिट पोटेंशियल हमने असेस किया उसमें से 53% जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए रखा गया है और 38% का हमारा एग्रीकल्चर का है। जो मेजोरिटी ऑफ द एमएसएमई यूनिट्स है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, इसीलिए हमने सजेस्ट किया कि जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है ना वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होने चाहिए।
प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के दौरान हुई ताजा बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में बताया कि भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 818 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इसके अलावा 4,800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति भी बाधित है। जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रशासन द्वारा सड़कों और विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बर्फबारी व वर्षा से प्रदेश के किसानों और बागवानों को विशेष लाभ मिलेगा। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के उच्च व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा व बर्फबारी की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।